संबंध। भगवान ने पहले 29वें श्लोक में स्वरूप के ध्यान योगी का अनुभव बताया, बीच में 30वें 31वें श्लोकों में सिद्ध भक्ति योगी की स्थिति और लक्षण बताए। अब फिर निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले सांख्य योगी का अनुभव बताने के लिए आगे का 32वां श्लोक कहते हैं।
आत्मौपम्येन सर्वत्र समां पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।
हे अर्जुन, जो ध्यान युक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। व्याख्या। जिसको इसी अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मभूत कहा है और जिसको 28वें श्लोक में अत्यंत सुख की प्राप्ति होने की बात कही है, उस सांख्य योगी का प्राणियों के साथ कैसा बर्ताव होता है, इसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। कारण कि गीता के ब्रह्मभूत सांख्य योगी की संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होती है। सर्वभूत हिते रतः, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो ऐसा वह नहीं चाहता, प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में अपनी समान स्थिति देखने वाला महापुरुष सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। सर्वत्र कहने का तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। अपने शरीर के अंगों का दुख दूर करने की समान चेष्टा होने पर भी अंगों में भेद दृष्टि तो रहती ही है और रहना आवश्यक भी है। जैसे हाथ का काम पैर से नहीं किया जाता, अगर हाथ को हाथ छू जाए तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु पैर को हाथ छू जाए तो हाथ धोना पड़ता है। अगर मलमूत्र के अंगों को हाथ से साफ किया जाए तो हाथ को मिट्टी लगाकर विशेषता से धोना, निर्मल करना पड़ता है। ऐसे ही शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार सबके सुख दुख में समान भाव रखते हुए भी स्पर्श अस्पर्श का ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति किंचन मात्र भी घृणा की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने शरीर के अपवित्र अंगों की रक्षा करने में और उनको सुख पहुंचाने में कोई कमी न रखते हुए भी शुद्धि की दृष्टि से उनमें स्पर्श अस्पर्श का भेद रखते हैं, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में स्पर्श अस्पर्श का भेद मानते हुए भी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा उनका दुख दूर करने की और उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर का कोई अंग अस्पृश्य होने पर भी वह अप्रिय नहीं होता, ऐसे ही शास्त्र मर्यादा के अनुसार कोई प्राणी अस्पृश्य होने पर भी उसमें प्रियता हितैषिता की कभी कमी नहीं होती। सुखम वा यदि वा दुखम, अपने शरीर की उपमा से दूसरों के सुख दुख में समान रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि दूसरों के शरीर के किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो वह पीड़ा अपने शरीर में भी हो जाए, अपने को भी उस पीड़ा का अनुभव हो जाए। अगर ऐसी समता ली जाए तो अपने को दुख ही ज्यादा होगा, क्योंकि संसार में दुखी प्राणी ही ज्यादा हैं। दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मा लोग अपने शरीर की और अपने शरीर के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरों के शरीरों की और उनके शरीरों के अंगों में होने वाली पीड़ा की उपेक्षा हो जाए, अर्थात जैसे उनको अपने शरीर के सुख दुख का भान नहीं होता, ऐसे ही दूसरों के सुख दुख का भी अपने को भान न हो, यह भी उपर्युक्त पदों का तात्पर्य नहीं है। उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है कि जैसे शरीर में आसक्त अज्ञान और सुख पहुंचाने में ज्ञानी महात्माओं की अभाविक चेष्टा होती है, तत्परता होती है। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई और वह लोक समुदाय में जाता है तो उस पीड़ित हाथ को धक्का न लग जाए, इसलिए दूसरे हाथ को सामने रखकर उस पीड़ित हाथ की रक्षा करता है और उसके धक्का न लगे ऐसा उद्योग करता है। परंतु उसके मन में कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथ की पीड़ा दूर करने वाला हूँ, इसको सुख पहुँचाने वाला हूँ। वह उस हाथ पर ऐसा एहसान भी नहीं करता कि देख हाथ, मैंने तेरी पीड़ा दूर करने के लिए कितनी चेष्टा की। पीड़ा को शांत करने पर वह अपने में विशेषता का भी अनुभव नहीं करता। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने की चेष्टा स्वाभाविक होती है। उनके मन में यह अभिमान नहीं आता कि मैं प्राणियों का दुख दूर कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ। उनका दुख दूर करने की चेष्टा करने पर वे अपने में कोई विशेषता भी नहीं देखते। उनका स्वभाव ही दूसरों का दुख दूर करने का, उनको सुख पहुंचाने का होता है। ज्ञानी पुरुष के शरीर में पीड़ा होती है तो वह उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ा की उपेक्षा भी हो सकती है, परंतु दूसरे के शरीर में पीड़ा हो तो उसको वह सह नहीं सकता। कारण कि जैसे दोनों हाथों में अपनी व्यापकता समान है, ऐसे ही सब शरीरों में अपनी स्थिति समान है, परंतु जिस अंतःकरण में बोध हुआ है उसमें पीड़ा सहने की शक्ति है और दूसरों के अंतःकरण में पीड़ा सहने की वैसी सामर्थ्य नहीं है। अतः उनके द्वारा दूसरों के शरीरों की पीड़ा दूर करने में विशेष तत्परता होती है। जैसे इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया, पीछे अश्विनी कुमारों ने उनको पुनः जिला दिया, परंतु जब इंद्र का काम पड़ा तब दधीची ने अपना शरीर छोड़कर उनको वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियां दे दी। यहाँ शंका हो सकती है कि अपने शरीर के दुख की तो उपेक्षा होती है और दूसरों के दुख की उपेक्षा नहीं होती, यह तो विषमता हो गई, यह समता कहाँ रही? इसका समाधान है कि वास्तव में यह विषमता समता की जनक है, समता को प्राप्त कराने वाली है। यह विषमता समता से भी ऊंचे दर्जे की चीज है। साधक साधन अवस्था में ऐसी विषमता करता है तो सिद्ध अवस्था में भी उसकी ऐसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु उसके अंतःकरण में किंचन मात्र भी विषमता नहीं आती। स योगी परमो मतः, उसकी दृष्टि में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं रहा। वह नित्य योग, परमात्मा के नित्य संबंध और नित्य समता में स्थित रहता है। कारण कि शरीर संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से उसका परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं और वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में एक रूप ही रहता है। अतः वह मुझे परम योगी मान्य है। विशेष बात पहली, यहाँ जैसे ध्यान योगी के लिए आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति कहा गया है। ऐसे ही कर्मयोगी के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा और ज्ञान योगी के लिए सर्वभूत हिते रतः कहा गया है। परंतु भक्ति योग में तो भक्त संपूर्ण शरीरों में अपने इष्ट देव को देखता है और अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी साधकों को चाहिए कि वे सब में अपने आप को देखें, तथा भक्ति योगी साधकों को चाहिए कि वे सब में ईश्वर को, अपने इष्ट देव को देखें। दूसरी बात, सबको अपना भाई समझो। यह भ्रातृभाव बड़ा उत्तम है, परंतु स्वार्थ भाव को लेकर जब भाई भाई लड़ते हैं तब भ्रातृभाव नहीं रहता, प्रत्युत वैर भाव पैदा हो जाता है। जैसे कौरवों और पांडवों में लड़ाई हो गई, परंतु आत्मोपम्येन सर्वत्र अर्थात शरीर भाव में कभी वैर नहीं हो सकता। जैसे अपने दांतों से अपनी जीभ अथवा होठ कट जाए तो दांतों को कोई नहीं तोड़ता, अर्थात दांतों के साथ कोई वैर नहीं करता। ऐसे ही अपने शरीर की उपमा से जो सब में सुख दुख को समान देखता है उसमें कभी वैर भाव नहीं होता। इस शरीर भाव से भी ऊंचा है भगवत भाव। इस भाव में अपने इष्ट देव का भाव होता है। तात्पर्य है कि भगवत भाव भ्रातृभाव और शरीर भाव से भी ऊंचा है। अतः भगवान ने गीता में जगह जगह अपने भक्तों की बहुत महिमा गाई है। जैसे वह परम श्रेष्ठ है, स मे युक्त तमो मतः, वे योगी मेरे मत में अत्यंत उत्कृष्ट हैं, ते मे युक्त तमा मतः, वे भक्त मेरे को अत्यंत प्यारे हैं, भक्तास्ते तीव मे प्रियः, आदि आदि।